मोहम्मद मेजी साहब का कॉलम इसराइल इन एक्शन 7 फरवरी 2022 को रोजा में जुम्मन शाया हुआ। बहरीन के वजीर दिफा ने तलवार अपने हाथों पर बुलंद की और इसराइली वजीर दिफा की तरफ बढ़ाते हुए उनको पेश कर दी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि आखिर इसराइल के बढ़ते कदम जो इब्राहिम मुहिदे की सूरत में खलीजी ममालिक की सरजमीन पर महसूस होने लगे हैं वो किस कदर जम गए हैं। गुज़िश्ता बुध की रात को इसराइली एयरफोर्स का बोइंग 707 सऊदी हदूद से परवास करता हुआ बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा में उतर गया। इसराइली वजीर दिफा कामयाबी के मजीद एहसास के साथ सीढ़ियाँ उतरते हुए बहरीन की सरजमीन पर वारिद हो गए। इस मौके पर इसराइली वजीर दिफा के पॉलिटिकल डिफेंस ब्यूरो के सरबरा जुबर पालती ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इसराइली फौजी तैयारी की बहरीन में आमद की नौईयत बजात खुद गैर मामूली संग मेल है क्योंकि इससे कब इसराइली फजाई का कोई तैयारा बहरीन में इस तरह नहीं उतरा और बिलाशुबा इसमें न सिर्फ बहरीन बल्कि पूरे खत्ते के लिए भी गैर मामूली अहमियत और इशारा मौजूद है। क्योंकि अगर हम खलीजी फारस और ईरान को जहन में रखें तो सिर्फ 120 मील का फासला बन जाता है और हम भी कोई ज्यादा दूर नहीं। इसराइली वजीर दिफा का यह दौरा सिर्फ एक दौरा ही नहीं था बल्कि इस दौरे में इसराइल ने यह संग मील भी कबूल किया कि बहरीन इब्राहिम मुहिदे के बाद खलीजी ममालिक में वो पहला मुल्क बन गया है कि जिसने इसराइल के साथ सिक्योरिटी के दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए हैं। इससे कब अरब सल्तनत और मराकश उसके साथ सिक्योरिटी मुहिदा कर चुका है। बहरीन अरब दुनिया का दूसरा खलीजी ममालिक का पहला मुल्क बन गया है। इस मुहिदे में सिर्फ रस्मी दिफाई ताल्लुकात की बाबती गुफ्तगू नहीं की गई बल्कि बहरीन के साथ ये नहायत दूरस असरात का हामिल भी होगा। उसकी रूह से दोनों ममालिक एडवांस इंटेलिजेंस पर तावुन जबकि मुश्तरका फौजी मशकों का फ्रेमवर्क तय करेंगे। इसके साथ साथ दिफाई सनत में भी एक दूसरे का हाथ बटाएंगे। अब एक दूसरे का हाथ कैसे बटाएंगे तो इसका समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। बहरीन इंटेलिजेंस मुश्तरका फौजी मशकों और दिफाई सनत की मसनूआत में से कुछ भी इसराइल को एक्सपोर्ट करने की पोजिशन में नहीं जबकि तीनों मसनूआत वो इसराइल से ही खरीदेगा और जवाब में इसराइल ना सिर्फ स्ट्रेटेजिक हवाले से अपनी पोजीशन को मजीद मुस्तहकम करेगा बल्कि उसके साथ साथ बहरीन जैसी तेल की दौलत से माला माल रियासत की दौलत का बहाव भी इसराइली खजानों का रुख अख्तियार कर लेगा। यानी हर एतबार से इसराइल मुनाफा ही मुनाफा हासिल करेगा। दिफाई तआवुन के आगाज का इशारा तो गुज़िश्ता बरस नवंबर में उस वक्त ही मिल गया था जब मुत्तहिदा अरब इमारात और बहरीन ने इसराइल की बहरिया के साथ मुश्तरका फौजी मशकें की थी। यमन के बिगड़ते हालात और उसके हवाले से ईरान और अरब मुल्कों की आकबत नाइंदिशी ने हालात को इस हद तक खराब कर दिया है कि इसराइल को कुल खेलने का मौका मिल गया। सिक्योरिटी के माहिरों से लेकर फौजी तैयारों के फजाई हदूद के इस्तेमाल तक सब कुछ इसराइल की मर्जी और मंशा के मुताबिक वकूफ पजीर हो रहा है। इसराइली वजीर दिफा ने बहरीन के दौरे के दौरान इस माहिदे पर तबसरा करते हुए इसको तारीखी इब्राहिम माहिदे का तसलसल करार दिया। अब ये तसलसल कहाँ तक जा सकता है इसको वाजे करने के लिए उन्होंने एक और कदम उठाया कि वो बहरीन में मुकीम अमरीकी 5th नेवल फ्लीट का दौरा करने भी गए। ये अमरीकी नेवल फ्लीट इस खत्ते में अमरीकी फौजी मफादात करने के बाद और ताकत की अलामत के तौर पर मौजूद है। यहीं से अमरीकन सेंट्रल कमांड सेंटकॉम की भी बहुत सारे फौजी ऑपरेशंस किए जाते हैं। इसराइली वजीर दिफा का ये दौरा इसलिए बहुत अहम है कि हाल ही में अमरीकी 5th नेवल फ्लीट की क्यादत में मशरक वस्ता में सबसे बड़ी अनमैन बेरी फौजी मशकें IMS का एहतमाम किया गया और इन मशकों में इसराइली बहरिया ने भी शिरकत की। आंखें खोल देने के लिए बल्कि अच्छी तरह से खोल देने के लिए ये जानना बहुत अहम है कि इसमें इसराइल के साथ पहली बार इन मुल्कों की बहरिया ने भी शिरकत की जो इसराइल को तस्लीम नहीं करते जिनमें सऊदी अरब और पाकिस्तान भी शामिल थे। ख्याल रहे कि तारीख में पहली बार था کہ پاکستان نے اسرائیل کے ساتھ ان بحری فوجی مشقوں میں شمولیت اختیار کی. بہرحال اسرائیل صرف یہیں تک محدود نہیں. ترک صدر اردوغان نے گزشتہ ہفتے یوکرین کا دورہ کیا. یوکرین روسی کشیدگی عالم منظرنامے کی اس وقت عام ترین خبر ہے. اس کشیدگی کے بڑھنے سے یورپ کو روسی گیس کی ترسیل رک سکتی ہے جو یورپ کے لیے بہت بڑا بحران ہوگا. جب یوکرین کا دورہ ختم کر کے ترک صدر انقرہ پہنچے تو انہیں بتایا کہ ترکی کے لیے اسرائیلی گیس خرید سکتے ہیں, اور نہ صرف یہ کہ ترکی کے لیے بلکہ یورپ کے لیے اسرائیلی گیس کی ترسیل بھی کروا سکتے ہیں. اور اس حوالے سے گفتگو اسرائیلی صدر کے اگلے ماہ کے وسط میں دورہ ترکی کے دوران ایجنڈے میں شامل ہوگی. ترک صدر نے 2 فروری کو عراق کے نیم خود مختار علاقے عراقی کردستان کے صدر نوشیروان بارزانی سے بھی ملاقات کی, اور اس ملاقات کی تفصیل بتاتے ہوئے انہیں بتایا کہ گیس کے معاملات میں وہ عراق کو بھی شامل کرنا چاہتے ہیں, اور اس حوالے سے ان کو عراقی کردستان کے صدر نے یقین دہانی بھی کرائی ہوئی ہے. ذرا اس سب کو روسی یوکرائن تنازع کے تناظر میں دیکھے تو سب سمجھ میں آ جائے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کہاں پر کھڑی ہے, کیونکہ نہ تو خلیج فارس ہم سے دور ہے, نہ ہی ہم عرب اور خلیج ممالک میں ہونے والے واقعات پر آنکھیں بند کر سکتے ہیں.